गोमटसार का मंगलाचरण करके और स्वाध्याय अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को नमन करके और उनके ग्रंथ को सार रूप में प्रदान करने वाली साक्षात विराजमान परम पूज गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामी करते हुए क्लास को प्रारंभ करती हूँ। ये नौमी प्ररूपणा चल रही है, 20 प्ररूपणाओं में नौमी प्ररूपणा है योग मार्गना। योग मार्गना के माध्यम से आपने जाना कि 15 प्रकार के योग होते हैं और 15 योगों के माध्यम से ये जीव निरंतर कर्मों को ग्रहण करता है। आपने परसों की क्लास में आहारक काय योग के बारे में जाना था। आहारक काय योग औदारिक और वैकरिक शरीर की तरह हमेशा जीवन भर किसी के साथ नहीं रहता, किंतु जिनको आहारक रिद्धि प्राप्त है ऐसे प्रमत्त संयत छठे गुणी स्थानवर्ती मुनियों को ही आहारक रिद्धि होने पर ये शरीर प्राप्त होता है। इसमें विशेष ये जान लेना है कि सातवें गुण स्थान में यानी अप्रमत्त अवस्था में ये जीव आहारक का बंद करता है और उसका उदय छठे में प्रमत्त संयत अवस्था में आता है। अब हम 80 नंबर के श्लोक पर चल रहे हैं, गाथा पर। आहारक पुतला कब निकलता है? आहारक शरीर की बात तो आपने जान लिया, कब निकलता है ये इस गाथा के माध्यम से जानेंगे। नियखेते केवली दुगा विरहे निकमण पौधि कल्याणे परखेते संवित्ते
जिन जिन घर वंदना ठमच।
ये जो केवली दुगम पे बिंदी है ये गलत है, इसको डिलीट कर दीजिएगा और सामूहिक रूप में गाथा पढ़ें।
नियखेते केवली दुगा विरहेणि कमण पौधि कल्याणे परखेते संविते जिण जिण गर वंदना ठमच।
निज क्षेत्री केवली द्विक विरहे निष्क्रमण प्रवृति कल्याणे परिक्षेत्रे संवृत्ते जिन जिन ग्रह वंदनार्थम च। नियखेते अपने निज क्षेत्र में यानी जहां पर स्वयं विद्यमान है उसमें केवली दुग भी रहे, केवली द्विक माने केवली और श्रुत केवली, तो केवली भगवान 13वें गुण स्थानवर्ती संयोग केवली भगवान को लिया है और श्रुत केवली जो छठे सातवें गुण स्थान में 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं ऐसे श्रुत केवली, इन दोनों का विरहे माने इनका अभाव होने पर यानी जिस क्षेत्र में मुनिराज हैं वहां पर केवली श्रुत केवली दोनों का अभाव है। निकमण बहुधि कल्याणे पर खेते संबित्ते उनका अभाव होने पर खेते माने दूसरे क्षेत्र में यानी खुद यदि भरत क्षेत्र में है तो वहां पर केवली श्रुत केवली का अभाव है तो दूसरी जगह विदेह क्षेत्र में जा करके और निष्क्रमण आदि कल्याणकों में पहुंच करके जिन जिन घर बंधन ठमचा यानी कि जब दूसरे क्षेत्र में औदारिक शरीर से नहीं पहुंचा जा सकता ऐसे समय में यदि किसी को आहारक वृद्धि हुई है और दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते हैं अपनी आहारक वृद्धि के द्वारा तब वहां पर जहां केवली शुद्ध केवली विद्यमान है वहां उनके विद्यमान रहने पर अथवा कहा कि जहां तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक आदि कल्याणक चल रहे हैं तीन कल्याणकों में से किसी कल्याणक के होने पर वह हरक पुतला निकल करके जा सकता है, तथा जिनेंद्र भगवान जिन ग्रह चैत्य चैत्यालयों की वंदना करने के लिए भी आहारक रिद्धि वाले छठे गुण स्थान वर्ती प्रमत्त संयत मुनि के आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से ये शरीर उत्पन्न हुआ करता है। आपको पूरी तरह से इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि आहारक शरीर ऐसा वैसा नहीं, ये आहारक शरीर आहारक रिद्धि वाले मुनिराजों के ही पुतले के रूप में निकलता है और वो अपने कार्य को पूर्ण करके पुनः आकर के उन रिद्धिधारी मुनि के शरीर में समा जाता है। तो कब निकलता है ये बता दिया कि जब अपने क्षेत्र में केवली शुद्ध केवली का अभाव है, दूसरे क्षेत्र में उस समय वो जा करके और केवली शुद्ध केवली के पादमूल में, यानी जहाँ पर हमेशा कल्याणक भगवान के चल रहे हैं, तीर्थंकरों के तीन कल्याणक, दो कल्याणक, पांच कल्याणक, तो इनमें किसी कल्याणक के होने पर वे जाते हैं और चैत्य चैत्यालयों की वंदना करते हैं या भगवान के चरणों में जाकर समोसरण में उनकी वंदना करते हैं और अपनी शंका का समाधान करते हैं। तो ऐसी अवस्था में इन कारणों के उत्पन्न होने पर आहार वृद्धि वाले मुनराज वहां पर अपने आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से ये शरीर बना करके जाते हैं। तो ऐसे समय में उनके आहारक शरीर उत्पन्न हुआ करता है। बाकी समय में आहारक वृद्धि वाले भी अपने औदारिक शरीर के साथ ही तपस्या करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं और अपनी चर्या में निमग्न रहते हैं। तो उस शरीर के उत्पन्न होने का एक पर्टिकुलर समय हुआ करता है। ऐसे समय में ही वह आहारक शरीर उत्पन्न हुआ करता है। आज वर्तमान काल में मुनिराजों को भी आहार वृद्धि नहीं होती है। कुंद आचार्य स्वामी के बारे में वर्णन आता है कि वे भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र में गए, लेकिन उनके बारे में जहां तक शिलालेख बतलाते हैं कि उनको कोई देवता विमान में लेकर के गए और वहां जाकर सिमंदर स्वामी के समोसरण में उन्होंने अपने अनेक प्रश्नों का समाधान किया, भगवान के प्रवचन आदि सुनकर के वापिस आ गए। कई वर्णन ये भी आता है कि उनको पादलेप जैसी रिद्धि हो गई थी, तो उसके कारण वो अधर आकाश में गए और उन्होंने विदेह क्षेत्र में जा करके भगवान के संबोधन को श्रवण करके भरत क्षेत्र में आकर अपनी मुनिचर्या पालन की और 84 पाहुड़ ग्रंथों को उन्होंने लिखा। आज 84 पाहुड़ ग्रंथों में से कुछ ही ग्रंथ, 8-10 ग्रंथ ही आचार्य कुंद स्वामी के मिलते हैं, बाकी ग्रंथों का अपने यहाँ अभाव हुआ है। धर्म विद्वेषियों के कारण वे ग्रंथ जल करके भस्म हो गए हैं और हमारे सामने फिर भी जितने ग्रंथ हैं तो उन ग्रंथों का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। तो कुंद आचार्य इस युग के महान आचार्य हुए, इसीलिए मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, यानी कि भगवान महावीर की और गौतम गणधर स्वामी की परंपरा में कुंद आचार्य एक महान आचार्य हुए जो कलिकाल सर्वज्ञ के समान थे। ऐसे उन आचार्य को नमन करके जैन धर्म चिरकाल तक अस्तित्व में रहे उनके माध्यम से कहा गया। तो ये आहारक वृद्धि की बात के अंतर्गत मैंने ये चीज आपको बताई। आपको जानना है कि वर्तमान में हमको और आपको औदारिक शरीर है, तेजस और कारमान ये दो शरीर सबके साथ में हमेशा रहते ही हैं। तो तीन शरीर से आज मनुष्यगण जीवित हैं, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर। मोटे रूप में स्थूल शरीर के रूप में हमको आपको औदारिक शरीर प्राप्त हुआ है। देव और नारकियों के वैक्रियक शरीर होता है जिसमें देवता शुभ अशुभ विक्रिया दोनों प्रकार की करते हैं और नारकी केवल अशुभ विक्रिया ही करते हैं अपने वैक्रियक शरीर के द्वारा। अब आगे चलिए, योग रहित जीव कौन से हैं और उनका स्वरूप क्या है, इस बात को अगली गाथा के द्वारा बता रहे हैं। जे सिमना संति जोगा,
जे सिमना संति जोगा,
सुहा सुहा पुण्य पाव संजनया,
सुहा सुहा पुण्य पाव संजनया,
ते होंती अजोगी जिना,
ते होंती अजोगी जिना,
अणोव मानंत बल कलिया,
अणोव मानंत बल कलिया।
सामूहिक गाथा पढ़िए। जे सिमन संति जोगा,
सुहा सुहा पुण्य पाव संजनया, ते होंति अजोगी जिना, अणोव मानंत बल कलिया।
येषां न सन्ति योगा, शुभा शुभा पुण्य पाप संजनकाः, ते भवन्ति अयोगिजिना, अनुपम अनंत बल कलिताः। जैसिम न सन्ति योगा, जिनके योग नहीं है, यानी योग का अभाव हो गया। कैसा योग? सुहा सुहा पुण्य पाप संजनिया, यानी पुण्य और पाप के कारणभूत जो शुभ और अशुभ योग हैं, जिनके निमित्त से पुण्य और पाप करता है मन। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, आप पढ़ते हैं कि शुभ कर्म से पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ से पाप का आश्रय होता है। तो शुभ और अशुभ योगी नहीं है, जो पुण्य और पाप को उत्पन्न कराने वाले हैं उनको अयोगी जिन कहते हैं, अयोगी नहीं है योग जिनके। ऐसे अयोगी जिन होते हैं जो योग रहित होते हैं, यानी अब तक जो 15 योग बताए ये सब संसारी जीवों के होते हैं, और जिनके योग का अभाव हो गया वो अयोगी जिन कहलाते हैं। वे कैसे होते हैं? अणोव मानंत बल कलिया, माने अनुपम और अनंत, अनुपम और अनंत बल से युक्त होते हैं। यानी काय बल उनके नहीं है, लेकिन वो ऐसे आत्मिक बल से संयुक्त रहते हैं जो अनंत काल तक अनुपम बल है। यानी शरीर का बल तो क्षीण हो सकता है, पर आत्मिक बल, क्षायिक बल जो उनको प्राप्त हुआ है अंतराय कर्म के नष्ट होने के कारण, पूर्ण रूप से अब अनंत बल जिनके पास में है, जो संसार के प्राणियों से बिल्कुल अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, ऐसे भगवान अयोगी जिन वे योग रहित होते हैं। तो अंतिम गुण स्थानवर्ती तथा उससे अतीत आत्मा योग से रहित हैं, उनका नाम ही है अयोगी। अस्मदादिक में बल योग के आश्रय से ही देखने या अनुभव में आता है। अतएव किसी को ये शंका ना हो कि जो योग से रहित हैं वे बल से भी रहित होंगे। यानी जीवत्व जिनके अंदर विद्यमान है तो उनके लिए शंका हो सकती है कि जब उनके पास बल ही नहीं है तो जीव कहाँ से। तो ये शंका न हो इसलिए कहा कि जो योग से रहित हैं वे बल से भी रहित नहीं है, उनके पास अनंत बल है। इस तरह के बल से युक्त हैं जो अनुपम है, अनंत है, जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसे अयोगी जिनको भगवान को बारंबार नमन करते हुए हमें भी अनंत बल की प्राप्ति हो, आत्मिक बल की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना भगवान से करना है। और मन बल, वचन बल, काय बल, यानी मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन तीनों में स्थिर रहते हुए भी अपनी विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए इन अयोगी जिनों को हमेशा नमन करना है, और अनंत बल अपने को भी प्राप्त हो, ऐसी अयोगी जिन से अपने को प्रार्थना करना है। इस प्रकार से आज का ये योग मार्गना में अभी गाथा एक और है, उसको कल पूर्ण करेंगे।